का था, रूह वही रूप नया।
गाथा ऐप पर आप सुन रहे हैं कहानी रंग जो छूटे नहीं। अरे भाई जरा रिक्शा ठीक से चलाओ ना, क्या सामान सहित नीचे ही गिरा दोगे? रिक्शे वाला बोला, हम क्या करें बहन जी, रास्ते में इतने गड्ढे हैं, झटके तो लगेंगे ही। वो बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही थी, कभी अपना बैग तो कभी अपनी अटैची संभालती। इतना तो विदेश से कानपुर आने में नहीं परेशान हुई थी जितना कि अपनी गली में आने से थक गई थी। वो झुंझलाते हुए बोली, हद हो गई, इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। गली के अंदर आते ही कनक ने देखा कि बाएं हाथ की तरफ लाला के किराने की दुकान, उसके बगल में कॉपी किताब की दुकान और उसके बगल में मुन्ना चाचा की मिठाई की दुकान, जहाँ वो अक्सर पापा के साथ जलेबी खाने आती थी। सब कुछ वैसा ही था, बस थोड़ी दुकानों पर पुताई और रंग हो गए थे, थोड़ी रोशनी और चहल पहल पहले से ज़्यादा हो गई थी। एक एक दुकान को घूरती हुई रिक्शे में अपना सामान पकड़े बैठी वो चली जा रही थी। तभी सामने से एक बूढ़े सज्जन निकले और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, अरे तू तो प्रिंसिपल साहब की बेटी कनक है ना, कैसी हो बिटिया, बहुत समय बाद देखा तुमको। अच्छा किया जो तुम अपनी बेसहारा माँ के लिए वक्त निकाल के आई। फिर छड़भर रुक कर बोले, प्रिंसिपल साहब के जाने से बेचारी बहुत दुखी थी। वो हल्के से मुस्कुराई और रिक्शा हिचकोला खाते आगे बढ़ गया। कनक मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ कि गली और दुकानों के साथ साथ रिश्ते भी नहीं बदले। तभी घर आ गया। घर के सामने पहुंचते ही अंदर से दीपक आया और बोला, चाची कनक दीदी आ गई है। दीदी आप अंदर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। दीपक उनके घर का पुराना नौकर था और माँ पापा के साथ यहीं रहता था। ड्राइंग रूम में अंदर दाखिल हुई तो सामने से माँ चली आ रही थी। माँ को देखते ही कनक का कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, माँ का क्या हाल हो गया है, इस हालत में वो माँ से अपनी बात कैसे रखेगी, जिस मकसद से वो आई है वो बात कैसे करेगी। मगर कुछ भी हो, बात तो करनी ही होगी। माँ बेटी मिलते ही रो पड़े। माँ उसको कलेजे से लगाए ऐसे ही बैठी रही। जब दीपक चाय लेकर आया तब जाकर दोनों थोड़ी सहज हुई। दीपक बोला, चाची हमने आपको समझाया था कि दीदी आए तो ऐसे रोना मत, मगर आप तो मेरी बात सुनती नहीं हो। दीपक माँ से इतने अधिकार से बात कर रहा था, कनक को उसका ये अपनापन दिखाना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद माँ ने खाना बनाया और सब लोग खा पीकर आराम करने चले गए। दिन भर की थकान के कारण कनक लेटते ही सो गई। सुबह उठी तो देखा माँ पूजा में बैठी अपनी गोविंद जी से बातें कर रही है। बाद में उसने माँ से पूछा, माँ भगवान जी से क्या बातें हो रही थी? माँ ने कहा कि वो भगवान से कह रही थी कि तुम अगर अपने बच्चे भी ले आती तो होली में और रौनक हो जाती। उसने कहा, माँ तुम तो जानती हो चिंटू के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए वो नहीं आ पाए, और तभी तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि मैं थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह लूँगी, और फिर वो लोग छुट्टियों में तो आएंगे ही। माँ पूजा करके रोज की तरह बरामदे में चाय पीने आ गई थी। वहीं बगल में कनक बैठी थी। माँ ने आंखों में नाक के ऊपर चश्मा रखा और अखबार पढ़ने लगी। तभी कनक ने प्यार से माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। माँ ने उसके सर पर हाथ से फेरा और पूछा, बेटा कल से लग रहा है तुम कुछ कहना चाह रही हो, बोलो। कनक ने कहा, देखो माँ मेरी बात को ध्यान से सुनना और प्लीज़ इसे अन्यथा मत लेना। अपना जो कानपुर में प्लॉट है हम उसे बेचने की सोच रहे हैं, क्योंकि पापा तो अब रहे नहीं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि गुप्ता अंकल और पापा ने ये प्लॉट साथ में खरीदा था, अब तो दोनों ही नहीं हैं और उनका बेटा तो बहुत ही बदतमीज है। उस प्लॉट को लेकर उसने पापा को कितना परेशान किया था, इतने सालों से हमारी वो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है। माँ ने कुछ सोचा और फिर बोली, वो सब तो ठीक है पर तुम्हें पता है ना कि उन लोगों की क्या स्थिति है, क्या तुम ये भी भूल गई कि उस झगड़े के 3 महीने बाद ही गुप्ता जी की हादसे में मौत हो गई थी? फिर भला गुप्ता आंटी से ये सब बातें कैसे करते? तुम्हारी आंटी ने घर पर ही परचून की दुकान खोल ली थी और उस दुकान से अपने घर का खर्च चला, किसी तरह जीवन की गाड़ी को खींच लाई थी। अगर हम उस प्लॉट में भी कुछ करते तो उन बेचारी का क्या होता? उनका हिस्सा तो पीछे का था, इसलिए तुम्हारे पापा ने भी कुछ नहीं कहा, और वैसे भी हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कनक बोली, मगर माँ ठीक है, वो तो तब की बात थी ना। अब सुना है कि उनका बेटा दिल्ली में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे नहीं लगता कि हमें और दया दिखानी चाहिए। मगर कनक, उस जमीन का क्या करना है? वो तो एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है ना, छोटी सी जमीन। जानती हो माँ, उसकी कीमत आज करोड़ों में है, और सूरज भी उसे बेचना चाहते हैं। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। माँ ने अपना चश्मा हटाया और दोनों हाथों से गहरी सांस लेते हुए आंखों पर हाथ फेरा। बेटा, जो तुम दोनों को ठीक लगे वो करो, पर इस बात का ध्यान रखना कि किसी का दिल ना दुखे। कुछ क्षण रुक कर वो माँ वो पापा की बैठक में चली गई और कनक चुपचाप वहीं निस्तब्ध बैठी रही। कुछ दिनों बाद सूरज भी आ गए। उन सब के आने से माँ के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी झलक आई, पर न जाने क्यों कनक को लगता रहा कि माँ उससे कुछ नाराज है। बहरहाल सूरज और कनक दोनों ही समझ रहे थे कि माँ प्लॉट को नहीं बेचना चाहती है, पर दोनों ने यह तय भी कर लिया था कि अब माँ कुछ भी सोचे, फैसला तो हम दोनों को ही लेना है। ऐसे भी माँ की उम्र हो गई है। सूरज ने आते ही प्लॉट को बेचने के लिए कई लोगों से बात शुरू कर दी थी। सुबह शाम बैठक में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, पर वाजिब दाम ना मिल पाने के कारण कहीं कुछ बात बन ही नहीं पा रही थी। कनक चाहती थी सब कुछ फाइनल करके होली बाद वापस लौट जाए। वैसे भी माँ की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं थी कि रुकने का कुछ सोचा जाए, पर होली वाले दिन कुछ ऐसा घटा कि कनक और सूरज को अपना निर्णय बदलना पड़ा। घर में सुबह से ही सन्नाटा पसरा था, सारा वातावरण गुमसुम था। बच्चे अभी सो रहे थे, नहीं तो शायद उन्हीं की आवाज़ गूंजती। तभी एक औरत ने घर में प्रवेश किया और जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। अरे, ये तो गुप्ता अंकल की पत्नी है, जिनसे हमारी अच्छी खासी दुश्मनी है, वो यहाँ क्यों आई हैं? एक पल में विचार आया कि कहीं उन्हें प्लॉट बेचने का पता तो नहीं चल गया। लेकिन वो तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कनक का हाथ पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे आज ही पता लगा, आज ही तुम्हारे पापा की खबर मिली है, उनके जाने से तो हम बेसहारा हो गए, अब कैसे मेरा चूल्हा जलेगा। उधर कनक को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। कनक ने कहा, आप साफ साफ बताइए ना, आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुमसे क्या छुपाना, मेरे बेटे रमेश की नौकरी दिल्ली में लग गई थी और उसने वहीं एक लड़की से शादी कर ली, जो मेरी छोटी सी यहाँ दुकान थी उसे भी बेच दिया। मैं एक बार 3 दिन से भूखी हनुमान जी की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी और तुम्हारे पापा जो रोज मंदिर कर दर्शन करने आते थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्हें मुझ पर दया आई और मेरी गलतियां और बेटे की बदतमीजी को भुलाकर बोले कि ये लीजिए 2000 रुपये और खाना खा लीजिए, आपको भूखो मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा आपको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। इसके बाद हर 10 तारीख को दरवाजे पर पैसा रखकर वो तेज़ी से वापस चले जाते थे। इन 10 सालों में वो पैसा देना कभी नहीं भूले और ना ही कभी मुझसे बात की, बस फरिश्ते की तरह आते और चले जाते। इस बात को सुनकर कनक की आंखों के रास्ते गर्म पानी बहकर गालों पर लुढ़कता जा रहा था। कनक के सामने दीवार पर लगी अपने पापा की फ़ोटो थी और उसे लगा कि पापा अब भी कह रहे हैं कि बेटा तुम अब तो बदल जाओ, वो शख्सियत बनो कि मुझे तुम पर गर्व हो, जीवन में रिश्ते नहीं रिश्तों में जीवन ढूंढो। कनक ने आंटी को उठाते हुए बोला, आप बेसहारा कैसे हो गई आंटी, वो आपकी जिम्मेदारी हमें दे गए हैं, जैसे पापा आपको पैसे देते थे वैसे ही उनकी बेटी आपको पैसे देगी। तभी प्लॉट का खरीदार आ पहुंचा। कनक ने कहा, अब हमें प्लॉट नहीं बेचना। माँ दूर बैठी सारा नज़ारा देख रही थी। उसने पास आकर कनक को गले लगा लिया और बोली, कनक ये तेरे पापा की परवरिश का रंग है, एक दिन तुझ पर चढ़ना ही था। ये होली के कच्चे रंग नहीं जो समय के साथ धुल जाएं, ये हमारी परवरिश का एक ऐसा रंग है जो छूटे नहीं। तभी बच्चे पीछे से पिचकारियां भर कर आ गए और सब पर रंग डालकर खुशियों से सबको सराबोर कर दिया। ये थी कहानी रंग जो छूटे नहीं।